ग्राम वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं ब्रजेश शर्मा। ग्राम वाणी की इंटरव्यू सीरीज के हाल विधायक जी में आज हमारे साथ हैं बालाघाट जिले की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 109 लांजी की विधायक एवं पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे। उनसे कुछ बातचीत हुई, प्रस्तुत है उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश।
आपने अपने क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में किस तरह के कार्य कराए हैं?
सभी अपने जितने भी निर्माण कार्य हैं, मैक्सिमम रोड पुल को लिया, जो भी जनता ने मांग थी उन सबको हमने पूरा करवाया है। और आज उसी के आधार पर हम जो है वो तीसरी बार चुनाव मैदान में आए हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं।
आपने जो काम बतलाए हैं उससे लग रहा है आपको कि क्षेत्र की जनता के जनजीवन पर काफी सकारात्मक प्रभाव है?
निश्चित रूप से पड़ा है।
अगले 5 वर्षों में आपका क्या विजन रहेगा, किन कामों को लेकर आपका अभिमत है, क्या आपका प्लान है?
देखिए, मैंने इस 5 साल में भी कोशिश किया था कि नहरों की लाइनिंग, जो हमारे खेती में धान होता है और वहाँ पर पानी की आवश्यकता होती है, महाराष्ट्र से भी हमारे यहाँ पानी आता है, तो ऐसे हमारी नहरों की लाइनिंग के लिए मैंने पूरे 5 साल प्रयास किए हैं, उसको आ गया है। तो अब जो मेरा अगला 5 साल रहेगा वो उसी को पूरा करने का रहेगा।
आप काफी मतलब पिछड़े हो और ऐसे आदिवासी इलाके से हैं, दलित आदिवासी और विशेष तौर पर आप चूंकि महिला प्रतिनिधि हैं, तो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए आपने किस तरह के प्रयास किए हैं?
मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो भी जनप्रतिनिधि महिलाएं चुनकर आती हैं उनके माध्यम से बाकी महिलाओं के जो साथ मिलकर काम करने की और सरकार की जितनी योजनाएं चलती है उन सब योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से जमीन पर हो जाए और उनको रोजगार, तो वो क्या सोचती है, स्व सहायता समूह के माध्यम से वो क्या करना चाहती है, जब भी उनको आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने हमेशा सहर्ष मुझे अपनी समस्या बताई है और मैंने उनका निदान किया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत जागरूक हैं और वो बहुत एक्टिव होकर काम कर रही है।
एक सवाल सर इसी तरह का है कि आप आदिवासी इलाके का प्रतिनिधित्व करती हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं और बच्चियों पर अपराध के मामले में प्रदेश 30वें नंबर पर है, क्या कहेंगे इस मामले में आप?
पूरे ओवरऑल पूरे प्रदेश की रेफरेंस में यदि हम बात करें तो इसमें कोई दो मत नहीं कि आपका जो आंकड़ा है एकदम सही है। फिर भी मैं कहूँगी कि ऐसे बहुत से अपराध हैं जो तो रजिस्टर्ड हो भी नहीं पाते हैं। आप तो उस आंकड़ों की बात कर रहे हो जो रजिस्टर्ड हुए हैं, कई ऐसे अपराध हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाते हैं। इसके लिए कानून हमारे बने हुए उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से करवाना ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी आने वाले समय में।
कोई भी राजनीतिक दल है मैडम, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जैसे भी कांग्रेस ने अभी वचन पत्र अपना घोषित किया है, तो नागरिकों को जरूरत से ज्यादा मुफ्त सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, तो आपका व्यक्तिगत अभिमत क्या है, क्या ऐसा उचित है?
देखिए, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, कहीं ना कहीं जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जो सरकार है मध्य प्रदेश में, जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी उस पहलुओं पर विचार करेगी, क्योंकि ये बात सही है कि हर 5 साल बाद चुनाव हो जाता है। अभी जब चुनाव होगा हम जिन वादों को लेकर जनता के बीच जाएंगे उनको पूरा करेंगे, तभी तो हम 5 साल बाद उनके सामने सिर उठाकर दोबारा वोट मांगने जाएंगे।
जी,
कांग्रेस का जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल क्लियर है, वो अपने विजन के साथ आगे बढ़ रही है।
नामांकन भरने की कल आखिरी तारीख है, कोई भी राजनीतिक दल हो टिकट नहीं मिलने पर या किसी तरह से असंतुष्ट होने पर दल बदल कर रहे हैं, क्या कहना है इस मामले में? कांग्रेस में स्थिति और अधिक वैसी हो गई है,
आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ बैठ के देख रही हूँ पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी सबसे ज्यादा गड़बड़ाई हुई है।
अच्छा,
कांग्रेस लोग के मालूम है कि पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन का माहौल है
जी।
और टिकट मांगना सबका अधिकार है, पूरी बुजुर्ग मांगना अधिकार है, लेकिन मुझे पता है कि जिस दिन टिकट की घोषणा हो गई है और जब मैदान में हमारे उम्मीदवार उतर जाएंगे कांग्रेस के, तो बाकी लोग भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, क्योंकि सबकी दिल इच्छा है कि कांग्रेस की सरकार बने। यदि वो लोगों का काम करना चाहते हैं, हित करना चाहते हैं, तो भाई जिस दिन सरकार बनेगी तभी तो उनका काम करवा पाएंगे।
मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपका जो प्रतिद्वंदी दल है उसकी चुनावी रणनीति काफी स्ट्रांग है, कांग्रेस एकदम पीछे नजर आ रही है, क्या आपका आकलन है इस मामले में?
आपका आकलन बिल्कुल गलत है। यदि आप मेरे बारे में आकलन करेंगे तो मैंने इसके पहले भी 2 बार, एक बार 32,000 से 2013 में और 2018 में मैंने 18,500 वोटों से हराया है। बीजेपी को वो व्यक्ति फाइट में नहीं दिखा, इसलिए आज उनके टिकट बदल दिए हैं। उसका व्यक्ति मैदान में आया है वो तो जिस दिन से 3 महीने हो गए उनकी टिकट की घोषणा हुई है, कहीं से कहीं तक मुझे मैदान में दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए मैं आपका आकलन से मान पाऊंगी कि भाई आपका स्थिति कमजोर है। मैं तो जानती हूँ कि भाई स्थिति मजबूत है और बहुत शानदार रोटों से इस बार हमारे क्षेत्र की जनता जो है बहुत शानदार रोटों से चुनाव जिताएगी, क्योंकि सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनाना है।
जी, मेरा आखिरी सवाल यह है कि आपने कहा कि हम तीसरी बार यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं, पिछले 2 चुनाव से ये चुनाव किस तरह से भिन्न दिखते हैं, क्या चुनौतियां हैं आपके समक्ष?
इस बार वन साइडेड माहौल है।
अच्छा,
इस बार कुछ सब लोगों की यही इच्छा है कि जीत का अंतर जबरदस्त हो और मध्य प्रदेश में जो सीटों का अंतर पिछली बार थोड़ी सी सीटों से हम आगे पीछे रह गए थे वो स्थिति निर्मित ना हो, इससे मध्य प्रदेश की जनता चाह रही कि अंतर बहुत ज्यादा हो कांग्रेस और बीजेपी में सीटों का, जो सरकार वो देना चाहते हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ग्राम वाणी से बात करने के लिए।
इस कार्यक्रम में प्रस्तुत विचार, वायदे, दावे और तथ्य विशेष व्यक्ति के हैं। इन दावों, तथ्यों और वादों की जिम्मेदारी मोबाइल वाणी या उनकी टीम नहीं लेती। श्रोताओं को सलाह दी जाती है कि निर्णय लेते समय आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें।